नमस्कार, द डीप डाइव की इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम पौधों की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर गौर करेंगे, फूल और परागण यानी पॉलिनेशन।
बिल्कुल।
हमारे पास जो ये सामग्री है, ये एक अध्याय का हिस्सा है जो इन विषयों को ना बड़े अच्छे से समझाता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि फूलों के मुख्य हिस्सों, उनके अलग अलग प्रकारों और पॉलिनेशन की इस पूरी प्रक्रिया को मतलब एक दिलचस्प तरीके से समझें।
हाँ, कोशिश यही रहेगी।
कभी सोचा है कि फूल सिर्फ खूबसूरत ही क्यों नहीं होते? असल में ये पौधों के लिए बहुत जरूरी हैं, उनके प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन के लिए। और वो जो मधुमक्खियां और तितलियां फूलों पर मंडराती रहती हैं, क्या वो सिर्फ रंगों को देखकर आती हैं? शायद नहीं।
बिल्कुल नहीं।
यहीं से हमारी आज की बातचीत शुरू होती है। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं।
जरूर।
तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फूल पौधे का वो हिस्सा है जो प्रजनन का काम करता है।
हाँ, रिप्रोडक्टिव पार्ट।
अक्सर बगीचों में हम देखते हैं मधुमक्खियों, तितलियों, भौरों, यहां तक कि कभी कभी हमिंग बर्ड्स को भी फूलों के आसपास मंडराते हुए। वो आते हैं फूलों में मौजूद एक मीठे रस, नेक्टर के लिए।
बिल्कुल सही। ये नेक्टर इन जीवों को बढ़ने और अपने अंडे देने में मदद करता है। और मजे की बात ये है कि नेक्टर लेते लेते ये अनजाने में ही पौधे की मदद कर जाते हैं।
अच्छा, कैसे?
जब ये एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं तो अपने साथ एक धूल जैसा पदार्थ, जिसे पोलन कहते हैं, उसे फूल के नल हिस्से यानी एंथर से मादा हिस्से यानी स्टिग्मा तक पहुंचा देते हैं। और बस यहीं से पौधों में लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी शुरू होती है।
अच्छा, तो एक आम फूल में होता क्या क्या है फिर? कौन से मुख्य हिस्से होते हैं? सुना इसमें चार मुख्य घेरे या वॉल्स होते हैं।
जी हाँ, चार मुख्य घेरे होते हैं। चलिए बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। सबसे बाहर होती हैं पत्ती जैसी हरी संरचनाएं, जिन्हें सीपल्स कहते हैं।
हरी वाली पत्तियां।
हाँ, हरी वाली। इनका समूह केलिक्स कहलाता है। इनका मुख्य काम है कली को खिलने से पहले सुरक्षित रखना,
एक तरह से गार्ड्स।
हाँ, कह सकते हैं। और क्योंकि ये हरे होते हैं तो थोड़ा बहुत भोजन बनाने में भी मदद करते हैं, फोटोसिंथेसिस।
अच्छा, यानी एक तरह से फूल के बॉडीगार्ड।
हाँ, बिल्कुल। फिर सेपल्स के अंदर आती है रंगीन पंखुड़ियां, जिन्हें हम पेटल्स कहते हैं।
हाँ, खूबसूरत वाली।
हाँ जी। इनका समूह करोला कहलाता है। ये अक्सर चमकीले रंगों वाली और खुशबूदार होती हैं। इनका काम है मधुमक्खियों जैसे परागणों को यानी पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ खींचना।
अच्छा, तो यही है वो जो हमें और कीट पतंगों को लुभाते हैं। और अंदर इसके बाद क्या है?
पेटल्स के अंदर होता है एंड्रोशियम, जिसमें होते हैं स्टेमिन। ये फूल का नर प्रजनन अंग है।
स्टेमिन?
हाँ,
नर अंग।
हाँ, हर स्टेमिन में एक पतला डंठल जैसा फिलामेंट होता है और उसके ऊपर होता है एंथर, जहाँ पॉलन ग्रेन्स बनते हैं।
अच्छा, एंथर में पॉलन बनता है।
जी, इन्हीं पॉलन में नर कोशिकाएं होती हैं।
और सबसे अंदर केंद्र में वहाँ क्या होता है?
सबसे अंदर फूल के बीचों बीच होता है गाइनीशियम, जिसमें मादा प्रजनन अंग होते हैं, जिन्हें पिस्टल या कार्पल कहते हैं।
पिस्टल या कार्पल, मादा अंग।
हाँ, एक पिस्टल के भी तीन भाग हो सकते हैं। सबसे ऊपर चिपचिपा स्टिग्मा, जो पॉलन को पकड़ता है।
चिपचिपा, ताकि पॉलन चिपक जाए।
बिल्कुल। फिर एक नली जैसा स्टाइल, और सबसे नीचे फूला हुआ हिस्सा ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल्स या अंडे होते हैं, जिनमें मादा कोशिकाएं होती हैं।
वाह, मतलब पूरा एक सिस्टम है अंदर। सीपल्स, पेटल्स, स्टैमिन, पिस्टल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रेशियम, गाइनोशियम। सामग्री में जो चित्र दिए गए थे, उनसे ये सब समझना काफी आसान हो गया था।
हाँ, चित्र काफी मददगार होते हैं।
संक्षेप में कहें तो पेटल्स लुभाते हैं, सीपल्स बचाते हैं, स्टैमिन पॉलन बनाते हैं, और पिस्टल उसे ग्रहण करता है। यही है ना?
बिल्कुल सही। और एक बहुत जरूरी बात ये है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी नर और मादा कोशिकाएं मिल जाती हैं।
हाँ,
तो यही ओवरी फल में बदल जाती है और ओव्यूल्स बीज बन जाते हैं।
अने वाह, फल और बीज यहीं से बनते हैं।
जी हाँ, इन्हीं बीजों से फिर नए पौधे उगते हैं। ये है इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा।
कमाल है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे फूल बिल्कुल एक जैसे होते हैं, है ना?
जो अलग भी होते हैं।
बिल्कुल। मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल फूल। इन्हें अपूर्ण, इनकम्प्लीट और पूर्ण कम्प्लीट फूल भी कहा जाता है।
यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल।
इनमें फर्क क्या है?
फर्क सीधा सा है। यूनिसेक्सुअल फूलों में या तो सिर्फ नर हिस्से स्टैमिन होते हैं या सिर्फ मादा हिस्से पिस्टल।
अच्छा, मतलब एक ही चीज होगी, या नर या मादा।
हाँ, दोनों एक साथ एक ही फूल में नहीं होते। जैसे पपीता, तरबूज, मक्का, खीरा, इनके फूल ऐसे ही होते हैं। नर फूल अलग, मादा फूल अलग।
ओह, यानी इन्हें साथी की जरूरत पड़ती है प्रजनन के लिए, अकेले नहीं कर सकते।
हाँ जी, बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ बाइसेक्सुअल फूलों में नर स्टेमिन और मादा पिस्टल दोनों हिस्से एक ही फूल में मौजूद होते हैं।
दोनों एक ही में?
हाँ, सरसों, गुड़हल, हेबिस्कस, गुलाब, टमाटर, मटर, सूरजमुखी, लिली, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। इनमें दोनों भाग होते हैं।
अच्छा, मुझे वो कहानी याद आ गई जिसमें एक ट्यूलिप बड़ा इतरा रहा था। वो कह रहा था कि मैं तो बाइसेक्सुअल हूँ, मैं खुद ही बीज बना सकता हूँ।
हाँ, वो कहानी।
और बेचारा पपीता कह रहा था कि मुझे तो मादा फूल की मदद चाहिए। ये कहानी इस बात को कितने अच्छे से समझाती है कि सारे फूल एक जैसे नहीं होते।
हाँ, वो कहानी इस आम गलतफहमी को दूर करती है। और ये अंतर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे तय होता है कि पौधे में पॉलिनेशन कैसे होगा।
अच्छा, पॉलिनेशन पे इसका असर पड़ता है?
हाँ, यूनिसेक्सुअल पौधों में तो क्रॉस पॉलिनेशन ही एकमात्र जरिया है ना, क्योंकि नर और मादा अंग अलग अलग फूलों पर है।
हाँ, सही बात है।
जबकि बाइसेक्सुअल फूलों में सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना भी बन जाती है क्योंकि दोनों अंग एक ही फूल में हैं।
ये बात तो है। चलिए अब आते हैं पॉलिनेशन पर। जैसा हमने शुरू में कहा, इसके बिना तो फल या बीज बनने से रहे
मुश्किल है।
और वो बात भी सही है कि पौधे बेचारे चल तो सकते नहीं, तो उन्हें मदद चाहिए होती है। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ फिर? परिभाषा क्या है इसकी?
पॉलिनेशन का सीधा सा मतलब है पॉलिन ग्रेन्स का एंथर नर भाग से निकलकर स्टिग्मा मादा भाग तक पहुंचना, बस इतना ही।
एंथर से स्टिग्मा तक का सफर?
हाँ, लेकिन ये होता कैसे है, ये दिलचस्प है।
हाँ, कैसे होता ये? सुना है इसके भी प्रकार हैं, सेल्फ और क्रॉस।
हाँ, मुख्य रूप से दो तरह से होता है। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें पॉलन उसी फूल के स्टिग्मा पर गिरता है या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुंचता है।
उसी पौधे पर?
हाँ, उसी पौधे पर। टमाटर, चावल, मटर जैसे पौधों में अक्सर ऐसा होता है।
ओके, और दूसरा?
क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें पॉलन एक फूल के एंथर से निकलकर उसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा तक पहुंचता है।
दूसरे पौधे तक, मतलब लंबा सफर।
हाँ, जैसे कद्दू, आलू बुखारा, सेब, सूरजमुखी में। इसमें थोड़ी ज्यादा जटिलता है।
लेकिन ये पोलन उड़कर या चलकर दूसरे पौधे तक कैसे पहुंचता है, खासकर क्रॉस पॉलिनेशन में? जरूर कोई मददगार होता होगा, कोई एजेंट।
बिल्कुल, यहीं पर आते हैं पॉलिनेशन के एजेंट्स या पॉलिनेटर्स। ये प्रकृति के सहायक हैं जो पॉलन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं।
पॉलिनेटर्स?
हाँ।
अच्छा,
और कमाल की बात यह है कि फूलों ने इन अलग अलग एजेंट्स के हिसाब से खुद को ढाला भी है।
मतलब उनमें अडेप्टेशन होते हैं।
हाँ।
अच्छा, जैसे कि कौन है ये एजेंट्स?
सबसे आम है कीट पतंगे, इंसेक्ट्स जैसे मधुमक्खी, तितली वगैरह।
हाँ, ये तो दिखते हैं।
इनके लिए फूल अक्सर बड़े, चमकीले रंगों वाले, खुशबूदार और नेक्टर से भरपूर होते हैं। कीट नेक्टर पीने आते हैं और पॉलिन उनके शरीर पर चिपक जाता है जो वे दूसरे फूलों तक ले जाते हैं।
अच्छा, नेक्टर के लालच में काम हो जाता है।
हाँ, स्वीट पी, साल्विया जैसे फूल इसके उदाहरण हैं। यहाँ तक कि पपीते में भी, जो यूनिसेक्सुअल है, कीट मदद करते हैं।
और जानवरों का क्या? क्या जानवर भी करते हैं ये?
हाँ, कुछ जानवर एनिमल्स भी ये काम करते हैं। पक्षी, चमगादड़।
चमगादड़? सच में?
हाँ, यहाँ तक कि कुछ छोटे स्तनधारी जैसे नेवला या सेंगेस भी। इनके लिए फूल अक्सर चमकीले रंग के होते हैं, नेक्टर भी खूब होता है, पर शायद खुशबू उतनी तेज ना हो।
अच्छा,
जैसे शुगर बुश को नेवला परागित करता है या एग्याव के फूल को चमगादड़। कितनी विविधता है प्रकृति में।
कमाल है, नेवला और चमगादड़ भी पॉलिनेटर्स हैं। और हवा? हवा का भी जिक्र था।
हवा भी एक बड़ा एजेंट है, लेकिन हवा को रिझाने के लिए रंग या खुशबू की जरूरत नहीं है ना।
हाँ, सही बात है।
तो हवा से परागित होने वाले फूल बिल्कुल अलग होते हैं। अक्सर छोटे, रंगहीन, बिना खुशबू और बिना नेक्टर वाले,
एकदम सादे।
हाँ, इनका पॉलन बहुत हल्का होता है, सूखा, ताकि आसानी से उड़ सके। कभी कभी तो पंखदार भी होता है, और स्टिग्मा बड़े और पंखदार होते हैं ताकि हवा में उड़ते पॉलन को पकड़ सकें।
अच्छा, स्टिग्मा बड़े होते हैं। हाँ, कैच करने के लिए।
हाँ, मक्का, चीड़, गेहूं, घास, ये सब हवा के भरोसे रहते हैं, बहुत सारा पॉलन बनाते हैं ये।
तो इनमें कोई तामझाम नहीं, सादगी से काम।
और पानी, पानी से भी होता है।
बिल्कुल।
और आखिर में है पानी,
पानी
वाटर, जो जलीय पौधे हैं उनमें पानी पॉलिनेशन में मदद करता है,
जो पानी में उगते हैं।
हाँ, इनके फूल भी अक्सर छोटे, रंगहीन, गंधहीन होते हैं। पॉलन काफी मात्रा में बनता है और उस पर पानी से बचाने वाली परत भी हो सकती है। हाइड्रिला, वैलिसनेरिया जैसे पौधे पानी के जरिए परागित होते हैं।
वाह, तो कीट, जानवर, हवा, पानी, प्रकृति ने कितने तरीके निकाल रखे हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि पॉलन सही जगह पहुंच जाए। ये तो अद्भुत
है ना?
मुझे वो कहानी याद आ रही है, पॉलन पीट और मधुमक्खी बी बेला वाली, कैसे वो मिलकर पौधों की मदद करते हैं। ये सब जानने के बाद मधुमक्खी का नेक्टर के लिए आना और अनजाने में पॉलन फैला देना कितना महत्वपूर्ण लगता है।
बिल्कुल, वो फन फैक्ट्स वाली बात भी यही थी।
और ये सोचना भी गलत है कि फूल बिना पॉलिनेशन के बीज बना लेंगे, ये तो मुमकिन ही नहीं लगता ज्यादातर मामलों में।
एकदम सही, ये विविधता दिखाती है कि कैसे पौधों और उनके पॉलिनेटर्स ने साथ साथ विकास किया है, जिसे सहविकास या कोएवोल्यूशन कहते हैं। हर एजेंट के लिए फूलों ने खास अनुकूलन मतलब अडेप्टेशंस विकसित की हैं, जिससे पॉलिनेशन सफल हो सके।
तो कुल मिलाकर आज हमने काफी कुछ समझा, फूल के अलग अलग हिस्सों को देखा, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल।
हाँ,
फिर देखा कि फूल दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल।
हाँ, पूर्ण और अपूर्ण।
और आखिर में पॉलिनेशन की पूरी प्रक्रिया को जाना, कैसे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता है
और कौन मदद करता है।
हाँ, और कौन कौन से एजेंट्स, कीट, जानवर, हवा, पानी इसमें मदद करते हैं। सामग्री में भी ये सब बिंदु अच्छे से दिए थे।
बिल्कुल, और ये सब सिर्फ पौधों के लिए ही जरूरी नहीं है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है।
हाँ, मतलब
जैसा हमने बात की, इसी पूरी प्रक्रिया से हमें फल, बीज, सब्जियां और अनाज मिलते हैं जिन पर हम निर्भर हैं।
ओ हाँ, सही बात है, हमारा भोजन।
वो टमाटर या सरसों जिनका जिक्र हमारी सामग्री में भी था, वो इसी पॉलिनेशन का नतीजा है। इसलिए जब हम कहते हैं कि मधुमक्खियों जैसे पॉलिनेटर्स को बचाना जरूरी है।
हाँ, ये आजकल बहुत सुनने में आता है।
तो वो सिर्फ प्रकृति के संतुलन के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, फूड सिक्योरिटी।
ये तो बहुत अहम बात। जब तो ये थी फूलों और पॉलिनेशन की दुनिया के हमारी आज की पड़ताल, उस सामग्री के आधार पर जो हमारे पास थी। हमने देखा कि ये खूबसूरत दिखने वाले फूल असल में कितने जटिल और कितने महत्वपूर्ण हैं,
पौधों के अपने अस्तित्व के लिए भी और हमारे लिए भी।
हाँ, हमारे भोजन के लिए भी।
और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, सामग्री में भी इस तरह के सवाल उठाए गए थे, याद है?
हाँ,
कौन सा?
सोचिए, अगर किसी फूल में पिस्टल या स्टेमन हो ही ना तो क्या होगा, वो पौधा कैसे प्रजनन करेगा?
मुश्किल होगी, यूनिसेक्सुअल जैसा मामला हो जाएगा शायद।
या वो ज्यादा बड़ा सवाल, अगर किसी दिन धरती से सारी मधुमक्खियां गायब हो जाएं तो क्या होगा?
अरे बाप रे, ये तो डरावना है सोचना।
हाँ,
ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है, कितनी आपसी निर्भरता है।
इंटरडिपेंडेंस।
बिल्कुल,
सोचने वाली बात है।
इस चर्चा में शामिल होने के लिए
धन्यवाद। उम्मीद है फूलों की ये दुनिया जो चुपचाप हमारे चारों ओर अपना काम करती रहती है, आप सबको भी उतनी ही आकर्षक लगी होगी जितनी हमें लगी।